전장하고 먹는 건데 너무 이게 그러나
जिस एक को संज्ञा मिले नय पक्ष सकल विहीन भाषि वह समय का सार है।
पक्षातिक्रांत की गाथा है। जो गाथा पढ़ी वो अपनी ही गाथा अपन ने पढ़ी है, अपने लिए ही सम्यक्त्व और सम्यक ज्ञान नाम मिलते हैं, किसी और की चर्चा नहीं है। यही जीव पक्ष को छोड़कर पक्षातिक्रांत हो जाता है तो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी नाम प्राप्त करता है। पक्ष को छोड़कर पक्षातिक्रांत हो जाता है तब, अब नहीं, पर्याय का पक्ष है। आज भी पर्याय का यदि पक्ष है तो पक्षातिक्रांत नहीं है। शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा का पक्ष न आए तो पक्षातिक्रांत नहीं कहलाता, और उसका पक्ष आ जाए तो पक्षातिक्रांत कहलाता है। 45 वर्ष का सार ये है स्वामी जी के, 45 वर्षों का सार इतना है और प्रयोजन भी इतना ही है कि पर्याय का पक्ष छोड़कर जिस समय यह जीव द्रव्य के पक्ष में आ जाता है, इसका भी अर्थ क्या कि पर्याय का कोणा कोणा अपने आप को पर्याय बुलाना छोड़ करके अपने आप को त्रिकाली द्रव्य बुलाना शुरू कर दे, वो पक्षातिक्रांत है। पक्षातिक्रांत का आज का अपना सारांश वाला व्याख्यान रहेगा, तो थोड़ा सा जो रह गया संस्कृत का उसको पढ़ते हैं, पुराना नहीं पढ़ करके। नानाविध नय पक्ष अवलंबनेन, है ना, ये मोबाइल बंद कर लो भैया, इतना भी पक्ष रह जाता है तो पक्षाधिक्रांत कहाँ से होंगे। बड़े मुश्किल से तो सुनने के लिए बैठते, समझ में भी बड़ी मुश्किल से आता है ना, और जिस काम के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए वहाँ हल्के फुल्के पुरुषार्थ से बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखो क्या लिखा, नानाविध नय पक्ष। रजनी भाई आपको ही देखना है, ये तो सब भारत के ही है। नानाविध नय पक्ष अवलंबनेन अनेक विकल्पै आगूलयन्ति। हिंदी अर्थ समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, कि मति ज्ञान से अर्थात मैं आत्मा हूँ इतना तो मति ज्ञान में आ गया था, अब मैं आत्मा हूँ ये कैसे, तो देखो क्या लिखा है, नानाविध नय पक्ष। कितने पक्ष है नय के, श्रुत विकल्पा नया हा, यावन वचन विकल्पा हा तावन नया हा, बहुत सारी बातें नयों के बारे में, लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि नय के पक्ष अनेक है और जितने पक्ष है उतने विकल्प है, ये सामान्य बात है ना। अब यहाँ की बात, नानाविध नय पक्ष अवलंबनेन, जब यह जीव एक अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव का निर्णय नहीं कर पाता और अनुभव नहीं कर पाता है, तब तक आत्मा के संबंध में नानाविध नय पक्ष उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गई बात, जब तक अनुभव नहीं होता है, एक ध्रुव शुद्ध चैतन्य का अनुभव पूर्वक निर्णय नहीं होता है, तब तक नयों के अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। स्वामी जी की भाषा में यहाँ कौन से नए विकल्प लेने हैं, दूसरे नहीं, केवल शुद्ध चैतन्य संबंधी, अपने ही स्वरूप संबंधी जो अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं उनकी चर्चा है। खाने का विकल्प, पीने का विकल्प, चाय का विकल्प, इन विकल्पों की तो इस दरवाजे के बाहर ही चर्चा समझ लो। समझ में आ गई बात? मोक्ष मार्ग में इन विषय भोगों को और धूल धानी को तो कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तो केवल एक शुद्ध चैतन्य के संबंध में नानाविध पक्ष लेकर के, कितने पक्ष लेकर के, अनेक प्रकार के पक्ष विकल्प उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं? देखो, दो कारण हैं उसके। निश्चय से कारण तो ये है कि जीव ने अपने ज्ञान में बाकी सारी दुनिया को जान लिया, लेकिन अपने को नहीं जाना, ये एक भूल रह गई। शास्त्र ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, शास्त्रों को समझने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन अपने त्रिकाली चैतन्य स्वरूप को समझने का प्रयत्न नहीं करता है, और सब जानने का प्रयास करता है, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करता है, प्रयत्न नहीं करता है। एक तो निश्चय से कारण ये है। दूसरा कारण शास्त्रीय है। शास्त्रीय कारण क्या है कि एक तो प्रमाण का लोभ, निश्चाभास का डर और व्यवहार का पक्ष, ये शास्त्रीय कारण है। कौन कौन से? नवीन भाई जी, आपसे सुनना चाहेंगे। प्रमाण का लोभ, निश्चयाभासी का डर और व्यवहार का पक्ष, इनके कारण से, इन तीन कारणों से, व्यवहार के कारण है। निश्चय से कारण तो इतना ही है, और ये भूल अनादिकाल से चल रही है कि जीव अपने आप को समझता नहीं है, समझना नहीं चाहता, समझने का प्रयत्न नहीं करता। और एक बात तथ्य की ये है कि ज्ञान में चाहे तीन लोक का ज्ञान हो, द्वादशांग का ज्ञान हो, लेकिन आत्मज्ञान न हो तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने के लिए जिसने श्रुत ज्ञान का उपयोग किया, वो नानाविध नए पक्ष का अवलंबन करता है। अब नानाविध नए पक्ष का अवलंबन करता है तो कोई दोष नहीं था, लेकिन आगे शब्द देख लो, अनेक विकल्प ही क्या होते हैं, अनेक विकल्प होते हैं। अनेक प्रकार से विचार करोगे तो अनेक विकल्प होंगे, ये भी कोई दोष नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा है, आकुलयन्ति। बात समझ में आ गई? यहाँ हाँ, ये तो जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा लक्ष्य है। प्रश्न समझ में आ गया रजनी भाई का? हाँ, प्रश्न दोबारा कि ये जो श्रुत ज्ञान में, मति ज्ञान की बात नहीं, श्रुत ज्ञान में चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के संबंध में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो विकल्प बुद्धिपूर्वक उत्पन्न होते हैं या अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न होते हैं, ये प्रश्न है। अभी तो प्रभु जीव मिथ्या दृष्टि ही है, अब वो सम्यक दृष्टि की चर्चा करने ही वाला था और करेंगे अभी कि वो जो विकल्प है तो उसमें रजनी भाई, यदि लक्ष्य तय हुआ है, यदि लक्ष्य उसको दिख रहा है तो जो चलना होता है, किसी ने बताया कि लक्ष्य इस तरफ है, उसको भी लक्ष्य नहीं दिखा, वो भी चल रहा है, और किसी को लक्ष्य दिखा है, उसको प्राप्त करने के लिए चल रहा है, तो चलना तो दोनों का ही है। बात समझ में आ गई? शास्त्र कह रहे हैं इसलिए विकल्प कर रहा है, एक बात, और लक्ष्य का आभास हुआ इसलिए वो विकल्प कर रहा है। तो इस समय तो अब बुद्धिपूर्वक ही विकल्प चल रहे हैं, क्यों कि अभी लक्ष्य की प्राप्ति तो हुई नहीं है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अब इन्हीं विकल्पों का अभ्यास हो जाए तो सहज भी हो जाए, अभ्यास नहीं हो तो बुद्धिपूर्वक करें। दूसरी बात आगे क्या लिखा है कि नानाविध नय पक्ष अवलंबने न, इतनी संस्कृत तो समझ में आ रही ना। मैं घर से चला था तो एक कल्पना थी कि सभी के सामने शास्त्र रहेगा, मैं कहूँगा कि ये पंक्ति देख लो, अब तो कहना पड़ेगा कि यहाँ देख लो। देखो इसमें से दूसरा अर्थ क्या, नानाविध नय पक्ष अवलंबने न, अनेक प्रकार के नयों के पक्ष के अवलंबन से एक ही त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का विचार कर रहा है। मागनंदी के सारे सूत्र यहाँ लगा लेना, समय का मैं उदाहरण के लिए भी आवश्यकता भी नहीं है। अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं, आगे क्या लिखा है, उन विकल्पों के कारण से बुद्धि जो है आकुलयंती। बात समझ में आ गई। अब यहाँ थोड़ा सा विचार ये करना है कि अज्ञानी को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने से वो जो बुद्धिपूर्वक विकल्प है श्रुत ज्ञान के, वो विकल्प आकुलयंती। आकुलयंती के दो अर्थ, एक अर्थ तो ये है कि जिसको वहां जाने की धधक है इसलिए ये विकल्प खटकते हैं। प्रेम जी समझ में आती है बात, समझ में आ गया पहला अर्थ, नहीं आया तो दोबारा, इसलिए 2-3 मिनट पहले शुरू किया था आज। ये सारांश भी है और पूरा भी करना है, है? मैंने कहा आपको तो छूट है, आप कभी भी आ सकते हो, है ना। मुझे तो टाइम पे आकर के 2-3 मिनट पहले, मैंने कहा मंगलाचरण का टाइम उसमें ले लेंगे। देखो क्या लिखा है कि विकल्पई आकुलयंती, विकल्पों से आकुलता होती है, है? एक तो वस्तु की अपेक्षा आकुलता होती है और एक खटक की अपेक्षा आकुलता होती है। बात समझ में आ गई। विकल्पों का स्वभाव ही दुख उत्पन्न करना है, है ना, एक बात ये। और जिसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, यूं समझ लो आपको ट्रेन पकड़नी है, बीच में जो आपका साधन था वो खराब हो गया, तो कैसा लगता है वहां पर कि कितने जल्दी सही हो जाए, कितने जल्दी पहुंच जाए। ऐसे ही साधक की पूर्व भूमिका में ऐसी तड़प होती है कि ये विकल्प भी नष्ट हो जाए तो मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। तो विकल्पों की खटक, दूसरा खटक की वजह से विकल्प आकुलता अर्थात दुख उत्पन्न करते हैं, एक ये है। वस्तु की अपेक्षा भी ये विकल्प दुख उत्पन्न करते हैं, दोनों ही अपेक्षा से। मुनि राजों को, सम्यक दृष्टियों को भी श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा का विचार करने पर अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, लेकिन अज्ञानी को वो विकल्प वैसे दुख उत्पन्न नहीं करते जैसे अज्ञानी को करते। समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं है कि आत्मानुभव होने के बाद ज्ञानी को विकल्प होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को भी विकल्प आते हैं, लेकिन ज्ञानी के जो विकल्प है वो अस्थिरता के विकल्प है, स्थिर होने के लिए लालायित होने वाले विकल्प है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये भी अज्ञानी के साथ कि टोडरमल जी कहते हैं कि यदि रोमांच हो गया तो वहीं अटक गया। अज्ञानी को श्रुत ज्ञान में मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ ऐसा रोमांच भी आ गया तो वहीं पर अटक जाता है, तो ये भी एक नुकसान है। तो क्या करता है अज्ञानी या पक्षाती क्रांत ने क्या किया कि श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को, दूसरी भाषा में कहे कि अज्ञानी का श्रुत ज्ञान या श्रुत ज्ञान के विकल्प शुष्क है। समझ में आ गई बात क्या? अज्ञानी के, दिलीप भाई आपको तो पकड़ में आ रही है, श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विकल्प अज्ञानी के शुष्क है, क्योंकि अज्ञानी को ठहरने के लिए जो त्रिकाल वस्तु चाहिए वो प्राप्त नहीं। यूं समझ लो कि चलने वाले दोनों व्यक्ति है, जिसको अपने घर में जाना है वो भी चल रहा है, और जिसको अभी घर ही नहीं मिला वो भी चल रहा है। फर्क है क्या नहीं दोनों में? जिसको घर मिल गया वो चल रहा है, तो उसकी जो चलने की आकुलता है वो अलग प्रकार की है, और जिसको घर मिला ही नहीं अभी उसको वो चल रहा है उसके चलने में। अब आप दोनों में से कौन हो प्रभु? क्या हमारे विचारों को निर्विचार होने के लिए कोई चैतन्य तत्व वस्तु मिली है या नहीं मिली है? विचार 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 ही करते रहेंगे, लेकिन विचारों को जब तक चैतन्य वस्तु प्राप्त नहीं होती वे विचार निर्विचार या निराकुल नहीं होते। तो वो मिला के नहीं मिला आधार, सारी जो मेहनत है वो इसी के लिए है। रहित से सहित होना है, यही साधना है। समझ में आ गई बात कि जो त्रिकाली चैतन्य वस्तु गुण से पर्याय, गुण भेद से, पर्याय से, राग से, विकार से, शरीर से, इन सब से रहित है, उससे सहित होना ही साधना है। और ये सारा प्रयोजन जीवन भर का स्वाध्याय है, जीवन भर के जो व्रत तप उपवास थोड़ा सा करते ही संतुष्टि हो जाए कि मैंने ये कर लिया है, 8 दिन के उपवास कर लिए, 1 महीने का उपवास कर लिया, या 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर लिया, या द्वादशांग को जान लिया, प्रभु इसमें प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, निराकुल जो निरालंब चैतन्य तत्व है, जब तक उसका दर्शन नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्या लिखा है कि विकल्प दुखी करते हैं। किसको दुखी करते हैं? ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी दुखी करते हैं, लेकिन अज्ञानी के विकल्प अस्थिरता के हैं। 2-3 पंक्तियां हैं। श्रुत ज्ञान बुद्धि अपि अवधार्य, श्रुत ज्ञान की बुद्धि को भी उसने अवधार्य। बाबू भाई जी क्या लिखा है शब्द? श्रुत ज्ञान की बुद्धि को भी साधक ने सविकल्प, स्वानुभूति में जो जीव है अभी निर्विकल्प नहीं हुआ, अभी पक्षातिक्रांत नहीं हुआ, उसने श्रुत ज्ञान की बुद्धि को भी क्या करा है? मर्यादा में लिया। ये तो शब्दार्थ हो गया। नवीन जी कैसे लिया मर्यादा में उसने? है कि श्रुत ज्ञान की बुद्धि में श्रुत ज्ञान के विकल्पों को गौण किया और त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य को ही ऊर्ध्व किया। बात समझ में आ गई? गौण किया इतनी तो बात है, लेकिन गौण कैसे किया? बात यह है कि श्रुत ज्ञान की बुद्धि में विकल्पों में नहीं आई। बात समझ में? एक सामान्य बात बताता हूँ, हमेशा याद रखना, मैं भी कोशिश करता हूँ 100%। प्रसिद्धि के लोभ में आत्मविशुद्धि को कभी मत खोना। प्रसिद्धि के लोभ में आत्मविशुद्धि को कभी मत खोना। बात समझ में आ गई। जिस शास्त्र ज्ञान के द्वारा प्रयोजन भूत चैतन्य तत्व को प्राप्त करना है, उस शास्त्र ज्ञान के द्वारा मानादिक का पोषण मत करना। जिन व्रतादिक के परिणामों से वीतराग शुद्ध भाव के लिए चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय लेना है, उन व्रतादिक के द्वारा मान कषाय का पोषण मत करना। क्योंकि रत्न पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उदाहरण बताया, व्रत तो एक ही है प्रभु, अहिंसा, और बाकी जो चार है वो क्या है कि जैसे फसल है, फसल की रक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, वैसे ही फसल की रक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ है वो तो व्रत का उदाहरण है कि अहिंसा नाम की फसल को बचाने के लिए चारों तरफ से बाड़ लगाई गई है बाकी व्रतों की। व्रत तो एक ही है, ऐसे ही लक्ष्य तो एक ही हो, चाहे ज्ञान का हो चाहे क्रिया का हो, इन दोनों का लक्ष्य क्या रहना चाहिए? एक शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ही लक्ष्य है, तो सही समझ पूर्वक चल रहे हैं। और कदाचित जो भी अपने पास सूक्ष्म ज्ञान हो या शरीर की क्रियाएं हो, उनके द्वारा प्रसिद्धि का लोभ न करके विशुद्धि के लिए प्रयत्न करना। किसके लिए प्रयत्न करना? विशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रसिद्धि के लोभ में विशुद्धि को मत खोना। यहाँ जो आकुलता उत्पन्न करने वाली मति ज्ञान की जो वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों को अवधार्य मर्यादा में लेकर समेट कर, कैसे समेटना है भैया? आविर्भाव और तिरोभाव की बात है कि पहले श्रुत ज्ञान के विकल्पों का आविर्भाव नहीं था। किसका आविर्भाव था? अनादिकाल से संसार में जब तक इस मार्ग को नहीं जानते थे तब तक विषय भोगों का ही आविर्भाव था, है ना? अब क्या हुआ कि इस मार्ग में आए तो किंचित विषय भोगों का तिरोभाव हो गया, है ना? अभिप्राय वासना में तो वो है, उसकी बात यहाँ पर नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़ गए तो शुद्ध चैतन्य के चिंतन में मनन में आ गया, लेकिन अभी त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु अनुभव में नहीं आई, उसके विकल्प चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? उसके विकल्प चल रहे हैं, तो उन विकल्पों की महिमा न आकर के उस शुद्ध चैतन्य की जितनी जितनी महिमा आ जाए उतने उतने विकल्प नीचे कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? महिमा किसकी? अपनी ही। और अपने में भी किसकी? कि अपने द्रव्य चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा, उसके अलावा इस विश्व में कोई महिमावान पदार्थ भी नहीं है, वास्तव में नहीं है। लेकिन जीव को संसार छोड़ना कठिन लगता है, स्वरूप में जाना और कठिन लगता है। लगता है कि संसार का क्या होगा, यदि ये विचार करता है तो तीन काल में अनुभूति नहीं हो पाएगी कि इसका क्या होगा और उसका क्या होगा और शरीर का क्या होगा। इसको ऐसा लगता है कि मैं शरीर का ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? गंगवाल जी, कौन रखता है बताओ? कोई किसी का ध्यान नहीं रखता प्रभु, ये तेरी मिथ्या मान्यता है जिसके कारण से तेरा उपयोग मलिन हो रहा है। तू जो ये सोचता है कि मेरे करने से ये होता है, तो भैया अभी दिल्ली बहुत दूर है, है? वो बाल पोती होती थी ना स्वामी जी के टाइम में, वो पढ़ने की जरूरत है, है? या बाल बोध पाठमाला भाग एक दो, है? अभी तेरी बुद्धि में, अभी तेरी बुद्धि यहीं घूम रही है कि मेरे करने से होता है, नहीं करूँगा तो कैसे होगा। अभी तो पक्षातिक्रांत होने के लिए तो बहुत दूर की बात है। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा जो पदार्थ है वो ऊर्ध्व रहे। बहुत उदाहरण तो इतने हैं साहब, इतने याद आते हैं। थाली में बहुत सारे पदार्थ हैं, जो प्रिय पदार्थ है वहीं से शुरुआत करता है, है? और दो चार पंगत हो, पहले गांव में पंगत होती थी और सबके थाली में नहीं आए तब तक शुरुआत नहीं होती थी, तो ऐसा वो सामने पदार्थ भी दिख रहा है, है? विकल्प भी हो रहे हैं, लेकिन ये बंधन है दूसरे लोगों का, ये नहीं आए तो कैसे शुरू करें। ऐसे ही तीव्र धधक, तीव्र तड़प वाले जीव को शुद्ध चैतन्य सामने दिखता है तो उसको ये श्रुत ज्ञान के विकल्प भी आकुलता उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो अंदर का रस काम करता है। वहां पर थाली में बहुत सारे पदार्थ है और जो प्रिय पदार्थ है वहीं से शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि अंदर का रस वहां काम कर रहा है। ये रस कोई दूसरा लाके नहीं देगा, ये ध्यान रखना। रस जो है अंदर का वो खुद ही उत्पन्न होता है, खुद ही उत्पन्न करना पड़ता है, करना पड़ेगा। पहले बुद्धिपूर्वक कर ले, बाद में अभ्यास हो जाएगा तो सहज भी हो जाएगा। ज्ञानियों को तो लगता है कि कैसे छोड़े, चैतन्य वस्तु को कैसे छोड़े, क्योंकि जिसके कारण से निराकुल आनंद, निराकुल शांति प्रकट हुई है, अरे जो निराकुल शांति और सुख का दाता है उसको कौन छोड़े। लोक व्यवहार में भी नौकर को यदि मालिक अच्छा मिल जाए तो कहते मैं इसको नहीं छोड़ू कभी, इससे बढ़िया मालिक मुझे कहीं नहीं मिलेगा लोक में। और तीन लोक के नाथ के मार्ग पर जिसको शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के दर्शन हुए, अनुभूति हुई, निराकुल और अशांत दशा का अभाव होकर के चैतन्य का रस झरता रहा और ऐसा स्वाद आया कि जो स्वाद आज तक इसने भोगा ही नहीं था, चखा ही नहीं था, उसको कौन छोड़े। ज्ञानी वहां से निकलना नहीं चाहते। और ज्ञानियों का व्यवहार का जीवन देख करके भरत चक्रवर्ती आदि का लोग कहते हैं कि देखो तो बाहर विषय भोगों का भी भोग भोगते हैं, है? अरे उनका मन देखो, मन विषय भोगों में नहीं है। कहां पर है कि जहां से आनंद मिला, जहां से शांति मिल गई, उनका मन तो वहीं रहता है। उनका जो अभिप्राय है, भाव है, ज्ञान में ये कह दो कि लब्धि ज्ञान है, है? ज्ञान के भी दो भेद है, लब्धि और उपयोग। लब्धि में भी वही है, श्रद्धा में भी वही है, जितनी विशुद्धि हुई अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक, जितनी विशुद्धि हुई है, जितनी विशुद्धि की बजाय स्थिरता कहो, जितनी स्थिरता हुई है उस श्रद्धा ज्ञान चारित्र से ज्ञान अभी वही, ज्ञानी अभी वही है। दुनिया को दूसरी जगह दिखाई देता है, चोर को सारे चोर दिखाई देते हैं, है ना लोक व्यवहार में, कि जिसके अभिप्राय में राग का पोषण होता है उसको ऐसा लगता है कि ये भी इस काम को करके राग का ही पोषण कर रहा होगा, लेकिन ज्ञानी राग का पोषण नहीं करते हैं। एक सीधा सा सिद्धांत है कि जो अत्यंत उपयोगी लगता है उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता, और जिसको शुद्ध चैतन्य के आश्रय से रत्नत्रय धर्म प्रकट हुआ, निराकुल सुख और शांति प्रकट हुई, वो वहाँ से खिसकना नहीं चाहता। उसको भूलने की तो बात ही छोड़ो, उसको जब अस्थिरता का राग आता है तो उसको भी श्रुत ज्ञान में विकल्प उत्पन्न होते हैं, उनको भी वह उसके अवलंबन के द्वारा ही एक छोटी सी बात, क्योंकि दुविधा में हूँ मैं, पूरा भी करना है और समय भी कम है ना, और जो कुछ विशेष बातें आती याद भी रखनी पड़ती है। क्या थी, निहाल भाई को सोनगढ़ जाने के विकल्प बहुत सताते है ना, तो निहाल भाई विकल्पों से बातचीत करते हैं, ये विकल्प तुम मुझे वहाँ ले चल, नहीं तो गुरुदेव श्री ने जो मुझे दवाई दी उस दवाई के द्वारा तेरा नाश कर दूंगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने, तड़प रहती थी कि हे विकल्प तू मुझे वहां ले चल, गुरुदेव श्री के पास ले चल, सोनगढ़ का विरह मुझे सहन नहीं हो रहा है, नहीं तो क्या करूंगा। उनके द्वारा दिए हुए अस्त्र से शस्त्र से तेरा नाश कर दूंगा। समझ में आ गई बात है? कि तुझे यदि तेरा जीवन प्रिय है तो है? तू मुझे वहां ले चल, उस भूमि का भी वहां तक पहुंचने के भी ऐसे विकल्प होते थे है? ज्ञानी को जब विकल्प सताते हैं तो ज्ञानी की दौड़ तो एक ही तरफ होती है, क्योंकि उसके आश्रय से ही विकल्प नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी तो विकल्पों में भी निर्विकल्प होने के लिए शुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर ही दौड़ लगाते हैं। अवधार्य आगे क्या है, श्रुत ज्ञान तत्वम अपि, श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्माभिमुखी कुर्वन, आत्मा की ओर उसका मति ज्ञान को भी चैतन्य आत्मा की ओर, श्रुत ज्ञान को भी चैतन्य आत्मा की ओर मोड़ करके अत्यंतम अविकल्पो भूत्वा, जब उसने क्या हुआ कि मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान का दोनों का मुंह शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर कर लिया, तो क्या हुआ कि अभी भी सविकल्प है, कि आत्मा प्राप्त नहीं हुआ तो वापस चलो, ऐसा नहीं है बात समझ। जैसे यहां पर या दूसरा उदाहरण यो समझ लो कि समव शरण में भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुए, काफी दिन हो गए, तो भी जी संख्या याद भी मत करना, अपना प्रयोजन वो है नहीं, केवल एक छोटा सा प्रयोजन है, वो दिन मुझे याद है लेकिन वो प्रयोजन नहीं है अपना। कि वहाँ ऐसे जीव थे कि भगवान है तो भगवान की दिव्य ध्वनि अवश्य गिरेगी, आज नहीं तो कल गिरेगी, ऐसे ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही चैतन्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए। यशोधर मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के बाद चेलना और वो वहीं खड़े हो गए कि ध्यान टूटेगा। चर्चा संग्रह में अंत में भी इसी तरह की बातें हैं कि जो ज्ञान के पिपासु, उपदेश के पिपासु लोग हैं वो मुनिराज के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अब ध्यान टूटेगा और हमको इनके उपदेश रूपी अमृत का, किसका उपदेश भी अमृत जैसा है, जिनके मुंह से वचन रूपी अमृत झरते हैं, ऐसे मुनिराज के ध्यान टूटने का इंतजार करते हैं। मैं 10 मिनट लेट हो जाऊं तो फोन आ जाए, बात समझ में आ गई। और मान लो और ज्यादा लेट हो जाऊं तो हम श्रोता बनते हैं, सामने वाला व्यक्ति वक्ता बन जाता है कि पंडित जी आप ही ऐसा करोगे तो वक्ता वो और श्रोता है, पंडित जी आप ये करोगे तो। देखो बात तो सही है कि होना तो यही चाहिए कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग की ईमानदारी हमारे भीतर भी होनी चाहिए। हाँ हो गया, बच गया सर। जगीती आगे शब्द है, थोड़े शब्दों का परिचय कराना है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों वहां खड़े हो गए, चैतन्य की तरफ मुंह करके खड़े हो गए कि जैसे समोशरण में यथार्थ श्रोता इंतजार करता है भागता नहीं, ऐसे ही यथार्थ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वहां से भागे नहीं है, चैतन्य की तरफ मुंह करके खड़े हो गए हैं कि अनंत ज्ञानियों ने कहा है कि मेरा सुख यहाँ है तो यही है, मुझे तो प्राप्त होगा ही, भागे नहीं वहां से। मति ज्ञान भी वहां से भागा नहीं, श्रुत ज्ञान भी वहां से भागा नहीं, दोनों ने अपना मुंह उसकी तरफ कर दिया कि अनंत ज्ञानी झूठे नहीं है और अनंत सिद्ध इसके साक्षी है। 6 महीने 8 समय में जो जाने वाले जीव है 608, वो इसके साक्षी है कि इस मार्ग पर चलने वाले को सिद्धत्व की मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले को तत्काल अतिंद्रिय आनंद और अतिंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अनुपम सुख लिखा है पहली गाथा में, सिद्धों की जब वंदना की तो अनुपम सुख लिखा है। और कैसा सुख भैया तुम पूछ रहे हो, कैसा, हम कह रहे हैं अनुपम, फिर पूछ रहा कैसा अनुपम, जिसकी उपमा ही नहीं है उसको क्या बताए। तो कब प्राप्त होता है साहब, कि यथार्थ तैयारी करने के बाद। जगीति शब्द है, देखो जग इति एव, अब की बार अष्टानिका में संस्कृत से ही सही थोड़े थोड़े शब्दों का ज्ञान हो जाए, या फिर ये जो प्रैक्टिकल गाथा है उसका जग तुरंत ही क्या होता है, तुरंत ही, कैसे तुरंत ही, तुरंत ही, तभी और तुरंत, दोनों बातें ध्यान रखना, फिर वही विकल्प समय ज्यादा नहीं है, है ना, तुरंत और तभी, तभी पहले तो अर्थ करना तभी। जब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं तभी, और एकाग्र हो जाते हैं तो तुरंत। जगीती के दो अर्थ है पंडित जी, कौन कौन से, तभी और दूसरा तुरंत, नहीं आई बात समझ में। उधर मुंह करके खड़े हो गए तभी, और अभेद हो गए तो तुरंत, नहीं है बात समझ में। मुंह करके खड़े नहीं रहे तो कभी नहीं, मुंह करके खड़े नहीं रहे तो कभी नहीं, और अभेद नहीं हो तो तुरंत नहीं, विलंब लग जाएगा फिर, नहीं है बात समझ में। मुंह करके खड़े भी रहे और अभेद भी हो जाए तो जगीती के दो अर्थ है। फिर क्या होता है कि अनादि काल से, अगला शब्द है स्वरस, उसका अर्थ अनादि काल से मति ज्ञान में श्रुत ज्ञान में विषय भोगों का रस ही बह रहा था। अब उसकी जगह जब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अभेद हो गए तो विषय भोगों का रस नहीं बहेगा। आगे शब्द पढ़ लो, क्या बहेगा, दिख रहा ना शब्द, कि अपना ही रस बहेगा और स्वरस से ही व्यक्ति भवंतम। अब तक क्या था, सविकल्प दशा में था, अनुमान जन्य रस था, क्योंकि चैतन्य के विकल्प में भी अलग ही प्रकार का रस आता है, चैतन्य का तो नहीं लेकिन चैतन्य जैसा रस आता है, अभी मुंह उधर होने से। लेकिन क्या हुआ कि वो परोक्ष था और अभेद होने पर व्यक्ति भवंतम का अर्थ करना प्रत्यक्ष, क्या अर्थ करना, नीचे हिंदी अर्थ तो है ही, वो गलत है ऐसा अभिप्राय मेरा नहीं है, नीचे जितना भी अर्थ है वो यथार्थ है, लेकिन जो समझ में आ रहा थोड़ा विशेष सरल भाषा में, व्यक्ति भवंतम प्रत्यक्ष हो जाता है, किसका रस, तो चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के विशेषण है। आदि मध्य अंत से रहित कौन? त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा आदि से रहित है, मध्य से रहित है और अंत से रहित है। तीन शब्द है ना सब इसमें, बहुत छोटे से शब्द थे। तो स्वामी जी को पढ़ा तो ये लगता है कि हमारी बुद्धि में और स्वामी जी की बुद्धि में ही अंतर है। क्या अंतर है? देखो तीन शब्द लिखे, आदि मध्य अंत से रहित। अब स्वामी जी ने अर्थ क्या किया कि जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, उसका मध्य कहाँ से होगा? अरे पकड़ने की बात है, हमारे तो पकड़ में नहीं आया, कितनी बार पढ़ा। ये होती विशिष्ट बुद्धि। इन तीन शब्दों में से ही, अरे जिसकी आदि नहीं, त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की आदि बताओ, उसका अंत बताओ। अब जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, स्वामी जी कहते हैं उसका मध्य कहाँ से होगा? लॉजिक से समझो, है ना, मतलब तर्क से भी। ये आदि मध्य अंत से रहित और जिसके लिए ये सारी बातें बताई थी, विमुक्तम शब्द है ना, रहित अनाकुलम, कि जितना भी द्वादशांग का उपदेश है वो इसके लिए था, निराकुल होने के लिए। चैतन्य तत्व तो निराकुल स्वरूप ही है, पर्याय में वो निराकुलता प्रकट नहीं हुई है, इसलिए पर्याय में आकुलता है। उस पर्याय में भी निराकुलता हो इसलिए अनाकुलम, अनाकुल जो शुद्ध चैतन्य तत्व है उसका आश्रय लेकर के अनाकुल होना चाहिए। यहाँ तो शुद्ध चैतन्य के विशेषण है, अनाकुलम एकम केवलम अखिलस्य, अखिल मतलब संपूर्ण, अपि मतलब भी, विश्वस्य ऊपरी, विश्व के ऊपर। इसका अर्थ बीच में थोड़ा संकेत में बताया था कि ये है कि सारा संसार अपना है, चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ही अपना है। सारा संसार एक तरफ और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होने हैं, ऐसा त्रिकाली चैतन्य वस्तु चैतन्य पदार्थ वो एक तरफ, वो कैसा है कि सारे विश्व के ऊपर है। माँ से पूछो कि आपका बेटा कैसा, कि सारी दुनिया से अच्छा है ना, है ना सर। कैसा है पोता, कि सारे विश्व से अच्छा है, है ना। ये है विश्व से ऊपरी तरंतम, अरे जितने भी विकल्प आए वो मेरे शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के से नीचे ही नीचे हैं। कोई भी विकल्प, कोई भी संसार का पदार्थ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इव अखंडम प्रतिभासमयम, अखंड प्रतिभासमय, अनंतम विज्ञान घनम, जैसे शब्द है वैसा हिंदी अर्थ समझ लेना, समय नथी। परमात्मानं समय सारम, अब ये शब्द है विंदन, इसके दो अर्थ है। शब्द है विंदन कि यहाँ जीव पक्षातिक्रांत हो गया, सारांश भी बताऊंगा आपको इस गाथा का। यहाँ जीव परीक्षा मतलब पक्षातिक्रांत हो गया, तो विकल्पों का अभाव हो गया और परिणति में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ही भासने लगा, तो जीव पक्षातिक्रांत हो गया। और उस पक्षातिक्रांत का क्या शब्द है संस्कृत में? विंदन। विंदन अनुभव करता हुआ, वेदन करता हुआ, नहीं ये बात समझ में, समझाएंगे दो तीन मिनट के लिए, थोड़ा सा देख लेना आज समय दे सको तो। हाँ कि ज्यादा भी नहीं चलाना है। हाँ दो अर्थ है इसके, जो विकल्प आए उतनी सी बात है कि विंदन के दो अर्थ क्या है, कि एक तो सामान्य अर्थ है अनुभव करते हुए, है ना, एक तो इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं अनुभव करते हुए। ये तो संजीव जी जानते हैं, संस्कृत का क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। संस्कृत जानने वाले और भी जानते होंगे, होते हुए अर्थ में। जैसे एक आदमी तो खड़ा हुआ है ना, तो खड़ा है तो वर्तमान में खड़ा है तो वर्तमान काल का प्रयोग होता है, चलने लगता है तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है उसके लिए। तो ऐसा ही यहाँ पर दिया, विंदन अनुभव करते हुए, वेदन करते हुए। दूसरी बात जो आचार्य कहना चाहते हैं शायद ये है, अनुभव करते हुए ही आत्मा दिखाई देता है, अनुभव न करो तो दिखाई नहीं देता। समझ में आ गई बात? ये बताना था कि विंदन, विंदन का अर्थ ये है अनुभव करते हुए। पर्याय में चैतन्य त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करते हुए, वो अनुभव करते हुए पर्याय को चैतन्य आत्मा दिखाई दिया, तब पर्याय उसका वर्णन करती है कि चैतन्य आत्मा ऐसा है जिसमें मुझे हमेशा रहना चाहिए। कब कहा उसने ये विंदन शब्द दिया? अनुभव करते हुए, वेदन करते हुए पर्याय कहती है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात आती है कि जब तक वो अनुभव नहीं करे, वेदन नहीं करे, मैंने किरण भाई को देखा ही नहीं, कोई कहे किरण भाई का वर्णन करो, कहाँ से करे? करूँगा तो कोई किताब इनके बारे में लिखी होगी, तो किरण भाई ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे, वर्णन कैसा किया मैंने? परोक्ष वर्णन किया। और एक बार मैंने इनको देख लिया और देखने के बाद ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आत्मा का वर्णन बिना अनुभूति के, बिना देखे निबंध पढ़ने जैसा है। समझ में आ गई बात? और दिखाई दिया, अनुभव हो गया, तो उसके बाद जो वर्णन आता है उसमें मर्म भी खिलता है, अनुभव भी शामिल है, अर्थ में भूल नहीं होती। नहीं आई बात समझ? कोई कहे कि, कई लोग कहते हैं यथा योग्य लगा लेना, कोई कहे कि किरण भाई तो इतने काले हैं मद्रासी जैसे लगते हैं, है? तो प्रत्यक्ष देखने वाला कहता है कि ऐसे चाहे अनंत लोग कहते हो तो भी मुझे विश्वास उन पर नहीं है, क्यों? कि मैंने प्रत्यक्ष देखा। नहीं आई बात समझ? गृहस्थी कहे सारे कि भैया तू घर में ही रह ले, दीक्षा मत ले, कि तुझे यहाँ सारी अनुकूलताएं हैं, घर में सारी अनुकूलताएं हैं। तो दीक्षार्थी कहता है कि सारी अनुकूलताएं होने पर भी मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ प्रतिकूलता ही भासती है। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम ने कहा जो नंद्यावर्त सात खंड का महल है वहाँ चलो, तो सीता कहती है कि जब तक राग था तब तक कर्मों ने रहने नहीं दिया। समझ में आ गई ना बात? अब कर्म तैयार है, मैं तैयार नहीं हूँ। अग्नि परीक्षा के बाद की बात है, अब कर्म तैयार है, पहले कर्म तैयार नहीं थे, पहले राग था तो कर्मों ने रहने नहीं दिया, अब राग नहीं है, कर्म कह रहे हैं तो मैं तो कर्म के अधीन नहीं हूँ, कि मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी। समझ में आ गई बात? कि दीक्षार्थी भी कहता है कि घर में निराकुलता नहीं है, जिस निराकुलता को आप निराकुलता समझ रहे हो वास्तव में वो पुण्य पाप का अधिकार है। समझ में आया सुबह का? कि वहां पुण्य पाप की परिभाषा ही नहीं मिलती। सुख नाम का अंश भी संसार में होता तो ज्ञानी उस अंश को भोगते भोगते संसार में ही रहते। बात समझ में आ गई? क्या लिखा है कि अनुभव करते हुए चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के दर्शन होते, शब्द है दृश्यते, सम्यक दृश्यते। पहले विकल्प में दृश्यते था, उससे पहले शब्दों में दृश्यते था, उपदेश में दृश्यते था, लेकिन अब कैसा है कि सम्यक दृश्यते ज्ञायते च, सम्यक बने दिखाई देता है, जाना जाता है। ततः वो जो स्थिति है उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। दूसरी भाषा में पक्षातिक्रांत समय सार कहते हैं, है ना। अब अंत में मुख्य समाचार क्या पढ़ा अपन ने, जो पॉइंट पढ़े वो ये है पूरी गाथाओं में कि इसके जो बिंदु है, पहला ये है कि पक्षातिक्रांत समय सार को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दो नाम मिलते हैं, जो टीका में अपन ने पढ़ा। पहला ये बिंदु था, समय सार कौन सा, समय सार को पक्ष वाला और पक्षातिक्रांत दोनों नाम मिलते हैं, लेकिन इस गाथा में जिसकी चर्चा है वो पक्षातिक्रांत समय सार की है, उसको दो नाम मिलते हैं, एक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो नाम मिलते हैं। चलो हमें नामों से कोई प्रयोजन नहीं था, आचार्य ने तो चर्चा कर ली। दूसरा बिंदु इस टीका में हमने क्या पढ़ा कि समस्त नए पक्षों से, अमृतचंद्र जी की भाषा में, और समस्त नए विकल्पों से, कुंद जी की भाषा, इन दोनों का अभाव होने पर जो दिखाई देता है वह नए पक्षातिक्रांत समय सार है। कोई पूछे ना कि पक्षातिक्रांत की गाथा का स्वाध्याय किया तो क्या किया, ये पांच वाक्य याद रहे तो बताने को हो जाए, बताना किसी को नहीं है, अनादिकाल से इसमें बहुत उपयोग चला गया। कदाचित किसी राजे से राग है उसको भी बताना पड़े तो दूसरा बिंदु क्या है नवीन भाई, बताइए क्या है कि नए पक्षों से और नए विकल्पों से मुक्त होने पर या नए पक्षों का और नए विकल्पों का अभाव होने पर जो दिखाई देता है उसे पक्षातिक्रांत समयसार कहते हैं। तीसरी बात, ये दो बातें तो इसमें बताई है ना, दो नाम मिलते हैं, फिर उसकी परिभाषा बताई, फिर उसकी विधि बताई। अब तीसरा बिंदु है विधि का, बस तीन ही बिंदु इसमें आते हैं। पक्षातिक्रांत होने के लिए या पक्षातिक्रांत समयसार के दर्शन के लिए श्रद्धान के लिए क्या करें, तो तीन बिंदु है। आगम के अवलंबन से, हमारे पास तो कॉपी पेन का ही अवलंबन नहीं, आगम का तो कहां से होगा है? आगम के अवलंबन से, मैं तो इसलिए कह रहा था, जरूरी क्यों था, मान लो तीसरा बिंदु आप लिख लेते आगम के अवलंबन से, उसके आगे जो शब्द है इनवर्टेड कॉमा में अंडरलाइन करके लिखने थे, आगम के अवलंबन से मैं ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, इतना इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन करके लिखना था कि अवलंबन किसका और किसके लिए, श्रुत का आगम का अवलंबन, लेकिन किसके लिए कि मैं ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, ये इन्वर्टेड कॉमा पूरा हो गया, अंडरलाइन पूरी हो गई। ऐसा निर्णय करें, विधि में पहला उपाय क्या बताया, देखो कई लोगों ने प्रश्न भी किया, श्रुत का अवलंबन एक दो ने प्रश्न किया था, केवल इतनी सी बात नहीं लिखी, श्रुत का अवलंबन लेना है, पक्षातिक्रांत होने के लिए मात्र श्रुत का ही अवलंबन लेना है, इतना नहीं लिखा है, अधूरी बात हो गई है। वो कहते ना ये नापाक को नमाज पढ़ना मना है, किसी ने नमाज तो सुना, नापाक तो सुना नहीं, आगे का सुन लिया, नहीं आए बात समझ। अपने यहां भी उसका अर्थ कर सकते हैं कि अशुद्ध वस्त्रों से गर्भगृह में प्रवेश न करे, अशुद्ध वस्त्र तो पढ़ना भूल गया, गर्भगृह में प्रवेश नहीं करे, बात समझ में आ गई कि क्या है कि केवल आगम का अवलंबन इतना ही नहीं लिखा, इसलिए आगम का अवलंबन किस लिए, लिखना पढ़ना सुनना सुनाना किस लिए? कि मैं ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, इसका निर्णय करने के लिए आगम का अवलंबन करे, है ना, विधि में पहला उपाय। उसके बाद मति ज्ञान तत्व को आत्माभिमुख करे, विस्तार से चर्चा अपन ने की थी। और तीसरा बिंदु श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्माभिमुख करे। समझ में आ गई बात? एक बात अमृत चंद्राचार्य जी के साथ मैं जोड़ देता हूँ, ये तीनों काम रुचि पूर्वक करे, आत्मरुचि से करे और पुरुषार्थ करे, और उसी जिसका निर्णय किया उसी में तन्मय हो, तो उसी समय यह जीव पक्षातिक्रांत हो जाता है। सभी आत्माएं पक्षातिक्रांत हो सकती हैं, सभी आत्माएं पक्षातिक्रांत हो और शीघ्र अतिशीघ्र अतीन्द्रिय सुख और सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसी भावना से, इसी पवित्र भावना से आज तक का अपना स्वाध्याय पूरा करते हैं। और अब तक कदाचित किसी को भी कषायवश तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगे कि इन्होंने कषायवश कहा या बुरा लगा हो तो उसकी क्षमा याचना के साथ सभी भावी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और आज का स्वाध्याय पूरा करता हूँ।